नमस्कार मित्रों, यह स्टीव डुपुइये जो डॉक्टर बॉब थील के साथ बाइबल न्यूज भविष्यवाणी कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं। हम आपको बाइबल की भविष्यवाणी के आलोक में विश्व घटनाओं के समाचार और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर थील, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो सफल प्रतीत होते हैं। कुछ लोग भाग्यशाली क्यों होते हैं और अन्य नहीं?
खैर, यह भाग्य की बात नहीं है। सच्ची सफलता पाने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पहले कुरिन्थियों 13वें अध्याय पद 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रेम कभी असफल नहीं होता, इसलिए प्रेम प्राप्त करना ही सफलता है। अब मैं प्रेरित पत्रस द्वारा लिखे गए उस संदेश को पढ़ना चाहूंगा जिसमें फिलाडेल्फिया को कैसे प्राप्त करें अर्थात भाईचारे के प्रेम को के बारे में बताया गया है। यह दूसरा पत्रस अध्याय 1 है, न्यू किंग जेम्स संस्करण 3रे पद से शुरू होता है। इसमें लिखा है कि जिसने हमें बुलाया है उसके ज्ञान के द्वारा हमें उसकी दिव्य शक्ति दी गई है। पद 5, इसीलिए पूरी लगन से काम करो, अपने विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में ज्ञान, ज्ञान में संयम, संयम में धीरज और धीरज में ईश्वर भक्ति जोड़ो, ईश्वर भक्ति में भाईचारा और भाईचारे में प्रेम जोड़ो। यदि तुम इन बातों का पालन करो और इनमें बढ़ते रहो तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में तुम निष्फल नहीं रहोगे। पद 10, आत हे भाइयों, अपने बुलावे और चुनाव को और भी दृढ़ करो। यदि तुम इन बातों का पालन करोगे तो ठोकर नहीं खाओगे और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में तुम्हारे लिए भरपूर प्रवेश द्वार खुल जाएगा। तो प्रेरित पत्रस हमें सच्ची सफलता का मार्ग दिखा रहे हैं और इसमें कई चीजें हमारी मदद कर सकती है, लेकिन आपने शायद गौर किया होगा कि उन्होंने ज्ञान का कई बार जिक्र किया है। सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 10 पद 10 में लिखा है, बुद्धि सफलता दिलाती है, इसलिए सही ज्ञान और उसका सही उपयोग बुद्धि सफलता दिलाती है और सच्ची शिक्षा इस ओर ले जाने में सहायक होती है।
क्या चर्च व्यक्ति को वह सच्ची शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है जो सफलता की ओर ले जाती है?
जी हाँ, प्रेरित पौलुस को इफिसियों 4 में यह लिखने की प्रेरणा मिली कि यीशु ने अपने आप को कुछ प्रेरितों, कुछ भविष्यवक्ताओं, कुछ सुसमाचार प्रचारकों, कुछ पादरियों और उच्च पदस्थ शिक्षकों को इसलिए दे दिया ताकि संतों को सेवकाई के कार्य के लिए सुसज्जित किया जा सके। इसलिए संतों को इस कार्य का समर्थन करना चाहिए। इसलिए हम मनुष्यों के छल कपट से बहकेंगे नहीं, बल्कि प्रेम में सच्चाई बोलते हुए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि शरीर का प्रत्येक अंग अपना कार्य करते हुए प्रेम में स्वयं की उन्नति के लिए बढ़ता है। इसलिए मूलतः यह कहा जा सकता है कि उचित पदानुक्रमित चर्च प्रशासन ही सच्ची शिक्षा प्रदान करता है। पिछली शताब्दी में हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रांग ने सफलता के सात नियम नामक पुस्तिका में लिखा था, यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सही लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तैयारी आती है। सफलता का दूसरा नियम शिक्षा और तैयारी है। यदि हमें जानकारी ही न हो तो हम किसी उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते हैं? क्योंकि जीवन के बारे में हम जो जानते हैं उनमें से एक यह है कि मनुष्य जानवरों की तरह सहज प्रवृत्ति का उपयोग नहीं करते। जानवरों को हमारे ऊपर एक तरह की बढ़त होती है, उनके पास हमारे जैसा दिमाग नहीं होता। उन्हें कुछ तरकीबें सिखाई जा सकती है, लेकिन उनमें सत्य और असत्य में अंतर करने, इच्छा शक्ति का प्रयोग करने का ज्ञान नहीं होता। वे नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र विकसित नहीं कर सकते, लेकिन इंसानों के लिए यह इतना आसान नहीं है। हमें सीखना और शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है। हमें चलना सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, शिक्षित होना पड़ता है, अपने भविष्य के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए हमें एक सही लक्ष्य निर्धारित करना होता है और फिर उस तक पहुंचने का सही तरीका सीखना और उसके लिए प्रशिक्षण लेना होता है। उनका कहना है कि बहुत से लोगों के पास सही लक्ष्य नहीं होता और वे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विशेष शिक्षा की उपेक्षा करते हैं। यही उनकी लिखी हुई बात है। बाइबल व्यवस्था विवरण अध्याय 17 के 14वें पद से राजाओं के बारे में बताती है। जब कोई राजा होता है तो वह सिंहासन पर बैठता है, वह व्यवस्था की पुस्तक की एक प्रति लिखेगा, वह उसे प्रतिदिन पढ़ेगा और आज्ञाओं का पालन करेगा। यदि वह उससे विमुख नहीं होता तो परमेश्वर उसके राज्य में उसके दिनों को बढ़ा देगा।
वे आयतें प्राचीन इज़राइल के एक राजा पर लागू होती प्रतीत होती है, वे आज हम पर कैसे लागू होती है?
दरअसल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि हमें राजा और याजक बनना है, यही हमारे साथ होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5-6 और प्रकाशित वाक्य 5:10 राजाओं और याजकों को अपने कार्यों को ठीक से निभाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। राजाओं को शासन करना है और याजकों को बुद्धिमानी से निर्णय लेना है। अब सच्चे ज्ञान में शिक्षित होने के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 में सेवकाई का उल्लेख पहले ही किया है। परमेश्वर ने फिलिप को एक विशेष स्थान पर जाने को कहा और वहां उसने इथियोपिया के एक व्यक्ति, एक नपुंसक को देखा। वह यशायाह की पुस्तक पर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रही थी। फिलिप को उससे बात करने को कहा गया। उसने उससे पूछा, क्या तुम जो पढ़ रहे हो उसे समझ रहे हो? नपुंसक ने कहा, मैं कैसे समझ सकता हूं जब तक कोई मुझे मार्गदर्शन न दे। तब फिलिप ने इस वचन से शुरुआत करते हुए यीशु के बारे में उसे उपदेश दिया। हमें आज भी और सहस्राब्दी में भी शिक्षकों की आवश्यकता है। यशायाह अध्याय 30:20 से शुरू होकर हमें यह सिखाया जाता है, फिर भी तुम्हारे शिक्षक अब कोने में नहीं धकेले जाएंगे, बल्कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे शिक्षकों को देखेंगी और तुम्हारे कान तुम्हारे पीछे से एक आवाज सुनेंगे जो कहेगी, यही मार्ग है, इस पर चलो, चाहे तुम दाई ओर मुड़ो या बाई ओर जाओ।
आने वाली सहस्राब्दी के ये शिक्षक कौन है?
वे शिक्षक पुनर्जीवित मसीह ही है। इसलिए आप परमेश्वर के मार्ग में जितना अधिक शिक्षित होंगे उतना ही बेहतर आप सिखा पाएंगे। बाइबल कहती है कि बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए। नीतिवचन 22:06 कहता है, बच्चे को उस मार्ग पर चलना सिखाओ जिस पर उसे चलना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6:6-7 में लिखा है, ये वचन जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं तुम्हारे हृदय में होने चाहिए। तुम इन्हें अपने बच्चों को लगन से सिखाओगे। जब तुम अपने घर में बैठे हो, जब तुम रास्ते में चल रहे हो, जब तुम लेटते हो और जब तुम उठते हो, तब उनसे बातें करो। अब नैतिक और बाइबल संबंधी शिक्षाओं के अलावा इस दुनिया में लोगों को यथासंभव पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित समझना सीखना चाहिए। मेरी पत्नी, मैं और हमारे दो बड़े बेटों ने विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और डिग्री हासिल की है। बेशक आज के इस दौर में जहां कॉलेज और विश्वविद्यालयों में वोक विचारधारा हावी है, सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए तकनीकी स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षण बेहतर विकल्प हो सकता है। और यह मत सोचो कि अगर यीशु एक दशक या उससे कुछ अधिक समय में वापस आ जाए तो तुम्हें शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम युवा हो सकता है कि तुम सहस्राब्दी तक जीवित रहो, तब तुम्हारी शिक्षा तुम्हारे लिए लाभदायक हो सकती है। यदि तुम वृद्ध हो तो तुम्हारी आध्यात्मिक शिक्षा अनेक प्रकार से उपयोगी हो सकती है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 17 में बेरिया के भाइयों के बारे में बताया गया है। वे दूसरों से अधिक परिश्रमी थे। वे थिसलनीका के लोगों से अधिक निष्पक्ष थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों की पूरी तत्परता से खोज की ताकि यह पता चल सके कि बातें सच है या नहीं। इसलिए वे सीखने की कोशिश कर रहे थे। पत्रस हमें 2 पत्रस 3:17-18 में बताता है कि हमें दुष्टों की गलतियों से बहकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना चाहिए। इसके अलावा 1 पत्रस 3:15 में पत्रस ने लिखा, अपने हृदयों में प्रभु परमेश्वर को पवित्र मानो और सदा उत्तर देने के लिए तत्पर रहो। इसका अर्थ है जवाब देना। जो भी तुमसे तुम्हारी आशा के कारण के बारे में पूछे उसे नम्रता और भय के साथ उत्तर दो। यदि आप तैयार नहीं है तो आप उत्तर नहीं दे सकते। यद्यपि यह क्षमता सभी युगों में आवश्यक है, फिर भी इन अंतिम समयों में दानियल अध्याय 11:33 में एक भविष्यवाणी है। इसमें लिखा है, समझदार लोग बहुतों को शिक्षा देंगे। पुराने रेडियो चर्च ऑफ गॉड ने भी यही सिखाया था। उन्होंने कहा था कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर के चर्च से संबंधित है। उन्होंने यह बात 1960 में लिखी थी।
दानियल की पुस्तक में लिखा है कि लोगों में से जो समझदार है वे बहुतों को शिक्षा देंगे। क्या इसका यह अर्थ है कि लोगों में कुछ ऐसे भी है जो नहीं समझते?
हाँ, दुख की बात है, बहुत से लोग उस भविष्यवाणी को भूल गए हैं, या कम से कम यह भूल गए हैं कि उसके बारे में क्या करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अगले एक दशक में वह भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। लेकिन पौलुस को भी अपने समय में मसीहियों के साथ ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इब्रानियों 5:12 में उन्होंने लिखा, यद्यपि अब तक तुम्हें शिक्षक होना चाहिए था, तो तुम्हें परमेश्वर के वचनों के मूल सिद्धांतों को फिर से सिखाने के लिए किसी और की आवश्यकता है। तुम्हें ठोस भोजन की नहीं दूध की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस इस बात से निराश थे कि जिन मसीहियों से वे संवाद कर रहे थे उनका ज्ञान और अधिक नहीं बढ़ा था। फिर से हमें शिक्षक बनने में सक्षम होना चाहिए। आपको पता है, यशायाह 43:10 में लिखा है कि हमें साक्षी होना चाहिए। और प्रेरितों के कार्य 5:29 में पत्रस ने उसे गिरफ्तार करने वालों से कहा, हम मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बाध्य है। यीशु को राजकुमार और उद्धारकर्ता के रूप में उठाया गया ताकि वह पश्चाताप और पापों की क्षमा दे। हम इन बातों के साक्षी है, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने अपने आज्ञा मानने वालों को दिया है। तो अगर फिलाडेल्फिया के ईसाई तैयार ही नहीं है तो वे गवाह कैसे बन सकते हैं, कार्रवाई कैसे कर सकते हैं और बहुतों को कैसे निर्देश दे सकते हैं।
अब तक तो ईश्वर ने हमें तैयारी करने के कुछ अच्छे संकेत दिए हैं, क्या उनके पास और भी कोई संकेत है?
यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा सहायता करेगा। मत्ती 10:18 से प्रारंभ, मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के सामने लाए जाओ, उनके और अन्य जातियों के लिए गवाही दो, परंतु जब वे तुम्हें सौंपते तो तुम्हें बोलना होगा, इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हें कैसे बोलना चाहिए। उस समय तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि तुम नहीं बोलते परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हें बोलती है। मरकुस 13:9-11 में भी इस बारे में चर्चा की गई है। सावधान रहो, वे तुम्हें पकड़वा देंगे, तुम्हें गवाही देनी होगी। सुसमाचार का प्रचार पहले होना चाहिए। वे तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, पकड़वा देंगे। चिंता मत करो और पहले से यह मत सोचो कि तुम क्या बोलोगे। उस घड़ी में जो कुछ भी तुम्हें बोलने की प्रेरणा मिले वही बोलो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है।
क्या ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ बोलेगा?
नहीं, पवित्र आत्मा आपको अध्ययन की हुई बातें याद दिलाएगा और आपके शब्दों को सही ढंग से चुनने में आपकी सहायता करेगा। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 14:25 से शुरू करते हुए कहा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए ही तुमसे कही है। परंतु जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, आएगा, तब वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। इसलिए आपको तैयार रहना होगा। प्रेरित पत्रस ने लिखा है कि जो लोग पूछते हैं उन्हें उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। यह आपको याद दिलाया जाना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने 2 तीमुथियुस 2:15 में कहा, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रमाणित करने के लिए परिश्रम करो, एक ऐसा कार्यकर्ता जो लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, सत्य के वचन को सही ढंग से बांधते हुए। और पुराने किंग जेम्स संस्करण में भी मूलतः यही बात कही गई है। लेकिन परिश्रम करने के बजाय इसमें लिखा है कि अपने आप को प्रमाणित दिखाने के लिए अध्ययन करो। हमें परमेश्वर के वचन का लगन से अध्ययन करना चाहिए, और इसमें न केवल बाइबल पढ़ना और उपदेशों पर ध्यान देना शामिल है बल्कि चर्च साहित्य पढ़ना भी शामिल है। इसका एक कारण यह है कि बाइबल के कुछ अंश हमेशा आसानी से समझ में नहीं आते, जैसा कि पत्रस ने 2 पत्रस 3:14 से शुरू करते हुए बताया है। इसलिए हे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए लगन से अध्ययन करो, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें लिखा है। जैसा कि उसने अपने पत्रों में इन बातों के विषय में लिखा है जो कुछ हद तक समझने में कठिन है, जिन्हें अज्ञानी और अस्थिर लोग तोड़मरोड़ कर अपना विनाश करते हैं, जैसा कि वे अन्य पवित्र शास्त्रों के साथ करते हैं। ध्यान दे कि पत्रस कहता है कि हमें लगन से अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अज्ञानी और अस्थिर लोगों से प्रभावित न हों। वैसे तो आपको एक शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 1:4 से लिखा, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा तुम पर अनुग्रह किया गया है, जिससे तुम उसके द्वारा हर बात में सब वचन और ज्ञान में समृद्ध हुए हो, इसलिए हमें ज्ञान में परिपूर्ण होना चाहिए। और यदि आप परिपूर्ण हैं तो परमेश्वर आपको दानियल अध्याय 11 के 33वें पद में बताई गई भविष्यवाणी के अनुसार बहुतों को शिक्षा देने के लिए उपयोग कर सकता है। और संभवतः आइए लूका के वृत्तांत लूका 21 के 12वें पद से शुरू करते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हें मेरे नाम के कारण राजाओं और शासकों के सामने लाया जाएगा, परंतु यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। इसलिए अपने मन में यह निश्चय कर लो कि तुम पहले से यह मत सोचो कि तुम क्या उत्तर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा मुख और बुद्धि दूंगा जिसका तुम्हारे शत्रु खंडन या विरोध नहीं कर सकेंगे। और याद रखें, यीशु ने यह भी कहा कि पवित्र आत्मा हमें उन सभी बातों की याद दिलाएगा जो उसने हमसे कही है।
इसका छीकाई क्या अर्थ है?
इसका अर्थ यह है कि यदि आप बातों को नहीं जानते तो पवित्र आत्मा आपको उन्हें याद नहीं दिलाएगी। इसलिए हमें अभी से अपने शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कदम उठाने चाहिए। आशा है कि आप अपने पड़ोसी से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी मदद करने के लिए और अधिक ज्ञान प्राप्त करें। आशा है कि आप में फिलाडेल्फिया युग का सच्चा प्रेम और ईश्वर के कार्य के प्रति समर्थन है। सच्ची शिक्षा आपको इस प्रकार सफल होने में मदद कर सकती है। सच्ची शिक्षा भाग्य की बात नहीं है।
धन्यवाद डॉक्टर थील। डॉक्टर थील के साथ और भी साक्षात्कारों के साथ साथ लिखित और ऑडियो लेखों के लिए हमारी वेबसाइट bnpi.net पर जाएं। यह स्टीव डुपुई की ओर से बाइबल न्यूज़ भविष्यवाणी कार्यक्रम है।